हवा महल इस कार्यक्रम की याद तो शायद बहुत से रेडियो श्रोताओं को आज भी होगी। आज हमने भी एक प्रयास किया है इस कार्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने का। संजय अनेजा की कहानी इंतजार, जिसका नाट्य रूपांतरण किया है सलिल वर्मा ने, और हवा महल के इस अंक के कलाकार हैं अर्चना चाओ जी और सलिल वर्मा। आइए सुनते हैं आज की प्रस्तुति इंतजार।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
सुबीर, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ, तुम मेरे साथ ही चल रहे हो।
अरे कोई बात नहीं, मैं आराम से चला जाऊंगा।
सुनो, तुम अभी ऑफिस के हद में हो और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और तुम्हारी सीनियर भी। इट्स एन ऑर्डर, अंडरस्टैंड? मेरा हैंडब्रेक संभालो, मैं गाड़ी निकालती हूँ।
अरे सुनिए तो, ये शुभ्रा भी ना सिर्फ 8 महीने बड़ी है मुझसे और साल भर सीनियर। मैं से चलाती है जैसे बॉस हो मेरी, और मैं भी ना मर्दों के नाम पर दाग हूँ, कुछ कह भी नहीं पाया। उफ, कितने स्लो रिफ्लेक्सेस हैं मेरे, पता नहीं क्यों ये रात रानी की खुशबू आज कुछ ज्यादा ही फैली है।
क्या सोच रहे हैं ऋषिवर, विराजिए। और हाँ, मैं कोई मेनका नहीं जो आपका ध्यान भंग करूंगी। कभी सोच कर देखिए कि सर्दी की अंधेरी रात में आपके साथ काम करने वाली एक लड़की जो संजोग से आपके पड़ोस में रहती है, सड़क पर अकेली जाए तो आपको अच्छा लगेगा
क्या? ये वही शुभ्रा है जिसके एक बोल सुनने के लिए लोग कान छाने बैठे रहते हैं ऑफिस में, जो मेरे पास बैठी है? क्या ये वही शुभ्रा है जिसकी एक मुस्कान के लिए सारा स्टाफ एक टांग पर तपस्या करने को तैयार रहता है?
कितना सोचते हो बाबा तुम, जब देखो ख्यालों में गुम रहते हो।
नहीं नहीं तुम,
बीसियों बार कहा है तुमसे कि जब हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो साथ चला करो। लेकिन नहीं, मैं गाड़ी तो लाती ही हूँ।
ऐसी कोई बात नहीं है।
जानते हो मेरे मम्मी पापा तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं।
मेरी? लेकिन मैं तो आपके घर कभी गया ही नहीं।
वही तो, तुम कभी हमारे घर नहीं आए। पापा ने कई बार कहा कि लड़का शरीफ लगता है, रहता भी अकेला है, कभी खाने पर बुलाओ, लेकिन मैं हर बार टाल जाती हूँ। पता नहीं तुम क्या सोचने लगो।
क्यों, इसमें सोचने वाली क्या बात है?
खैर जाने दो इस बात को। वो तुम्हारे गांव की जमीन के मामले का क्या हुआ, बहुत दिनों से छुट्टी भी नहीं ली तुमने।
कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में हुआ, उसके बाद सिर्फ एक बार और गया मैं गांव, जमीन भाई के नाम करने। बस अब गांव जमीन से नाता तोड़ लिया मैंने।
व्हाट, तू पागल हो एक नंबर के। उसी भाई के नाम जमीन कर दी जिससे मुकदमा लड़कर वो जमीन तुमने हासिल की थी? आर यू मैड?
नो आई एम नॉट। मुकदमा लड़ा था अन्याय का विरोध करने के लिए, और अपनी मर्जी से जमीन भाई के नाम कर दी ताकि सारी उम्र भाई को सिर्फ इस वजह से भाभी के ताने न सुनने पड़े।
सिर्फ यही वजह?
हाँ, और फिर बाबा के जाने के बाद भाभी ने मुझे और मेरी माँ को जो रोज गिन गिन कर रोटियां खिलाई हैं, उनका हिसाब भी तो बराबर करना था। अब तो माँ भी नहीं रही, मुझे अकेले का क्या है, मेरे लिए मेरी सैलरी ही काफी है।
आज तुम अकेले हो, हमेशा तो नहीं रहोगे। कल को जब जिम्मेदारी सर पर आएगी तो ये जमीन तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देती, ये क्यों नहीं सोचा तुमने? बाद में पछताना मत अपने फैसले पर।
नहीं, ऐसा मौका नहीं आएगा।
लो हम पहुंच भी गए, एक काम और करो, अब कहाँ रसोई में जाकर खटपट करोगे, मेरे घर चलो, आज खाना हमारे साथ ही खा लेना।
गाड़ी की सवारी और घर का खाना, इतनी अय्याशी एक साथ शायद हजम ना हो, आदत बिगड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया लिफ्ट देने के लिए भी और खाना ऑफर करने के लिए भी। शुभ्रा जी बाय, गुड नाइट।
यू आर एन इडियट स्वीट इडियट। ओके, गुड नाइट सुबीर।
गुड नाइट। कमाल है, ये मुझे पागल कह गई, इडियट बोल गई, और मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। खुद तो कहती थी कि वो मेनका नहीं है, झूठी कहीं की। आज ये रात रानी की महक पीछा क्यों नहीं छोड़ रही मेरा? लोगों के लिए ये छुट्टी का दिन बहुत देर से आता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत जल्दी आ जाता है, और जितनी जल्दी ये आता है उतनी देर से कटता है। ये रेडियो ना हो तो किसी साथी की जरूरत ही नहीं। वैसे एक बात अच्छी है, ये रेडियो बुरा नहीं मानता, इसका दिल भी नहीं दुखता। जब जी चाहे ऑन करो, जी भर जाए तो। अरे ये दरवाजे पे कौन खड़ा है? नमस्ते आंटी।
आंटी नहीं माँ, शुभ्रा की बात तो तुम टाल जाते हो। आज ये बुढ़िया तुम्हें रात के खाने पर बुलाने आई है, इसे तुम माँ का आदेश समझो।
कैसी बात करती हैं आंटी, सॉरी माँ। बुढ़िया आदेश? माँ इतना सब कुछ कह दिया आपने, अब इस बेटे के पास आदेश टालने का कोई रास्ता बचा है क्या?
बस बेटा मुझे तसल्ली हो गई, अब मैं चलूं, ये मंदिर से आते ही होंगे।
देखिए माँ, आपके आदेश के अनुसार बिल्कुल सही वक्त पर आ गया मैं। अब बुढ़िया बुढ़िया मत कहिएगा कभी, ये मिठाई घर के लिए।
जीते रहो बेटा, आओ बैठो, मैं शुभ्रा को बुलाती हूँ।
अरे शुभ्रा जी, आपको ठंड नहीं लगती? मैंने दो दो स्वेटर पहन रखे हैं, और आप तो...
अब मैं तुम्हारी तरह अपने इस खूबसूरत सूट पर अत्याचार तो नहीं कर सकती ना, और तुम भी ना बुद्धू हो पूरे, सूट की तारीफ करने की जगह सर्दी का रोना ले बैठे।
आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई फिक्र कर रहा है आपकी, बजाय सूट की तारीफ करने के।
लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी इस बात से?
मुझे बुद्धू का खिताब दे डाला इसलिए शुभ्रा जी, इनफैक्ट आज तक किसी ने मुझे बुद्धू, इडियट, पागल नहीं कहा, लेकिन जाने क्यों आपका ये कहना मुझे बुरा नहीं लगा।
यार एक बात सुनो, ये तुम जो हमेशा मुझे बड़ी और सीनियर होने का एहसास दिलाते रहते हो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सताने वाली हूँ। वैसे भी अब जरा सा ही फर्क है हमारी उम्र में, ये आप और शुभ्रा जी की आदत जितनी जल्दी बदल लोगे उतने ही सुखी रहोगे।
ओहो, तो क्या मेनका जी कहकर बुलाऊं आपको?
ना
सॉरी तुम्हें।
ना सिर्फ मेनका भी चलेगा, और आप तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो तुमने आप कहा तो तुम्हें झील के किनारे ले जाकर धक्का दे दूंगी मैं, पागल कहीं के।
यू मीन इंद्र भगवान को खबर कर दूं कि इस विश्वामित्र से अब उनकी गद्दी को कोई खतरा नहीं रहा।
इन पुराने खंडहरों और इमारतों में पता नहीं तुम्हें क्या आकर्षण नजर आता है। कहीं घूमने की बात करूं तो किसी किले या किसी मंदिर में ले जाते हो। एक और दुनिया आगे से और आगे भाग रही है, दूसरी ओर तुम हो कि इन वीरान खंडहरों के दीवाने हो अब तक।
तो मुझ पर ये जिम्मेदारी छोड़ो ही ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। खुद ही जोर देकर प्रोग्राम बनाती हो, बल्कि बनवाती हो, फिर कमी निकालती हो।
अरे सुबीर नाराज क्यों हो गए? मैंने कोई कमी नहीं निकाली, ऐसा कहा कुछ? मैं तो बस तुम्हारे दिल को थाना चाहती थी, इसलिए ऐसा कहा। सच पूछो तो अब मुझे भी ये गुजरे जमाने की निशानियां बहुत अच्छी लगने लगी है। पहले देखने पर बस चमक दमक पर ध्यान जाता था, अब दूसरे नजरिए से देखती हूँ तो मायने बदले से दिखते हैं।
शुभ्रा नई इमारतों से मुझे कोई परहेज नहीं, मैं सुंदरता और स्टाइल को नापसंद नहीं करता, लेकिन जो दिखता है वही तो पूरा सच नहीं। नींव किसी को दिखाई नहीं देती, मगर एक पुख्ता बुनियाद के बिना कोई इमारत तामीर हो सकती है क्या? पता ही नहीं, ये जगह बेशक वीरान है, लेकिन मेरे कान तो यहाँ आकर तलवारों की झंकार को भी सुनते हैं और पायल की झंकार को भी, मंत्रों की ऋचाएं भी सुनता हूँ और मासूम प्यार को भी पलते बढ़ते सुनता हूँ।
कमाल का थॉट है सुबीर, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं।
शुभ्रा, वो वक्त और उसकी निशानियाँ हमारे आज के वक्त की बुनियाद है, जिसे दुनिया देख सरा रही है। आज लोगों के पास वक्त नहीं, सबको आगे और आगे और आगे निकलना है, पा लेना है सब कुछ। उसके उलट मेरे पास वक्त भी है और मैं सब कुछ पा लेना भी नहीं चाहता।
शायद तुम ठीक कह रहे हो।
शाम हो गई है, घर चले आप।
चलिए ऋषिवर, इस युग में तो लगता है मेनका ही तपस्विनी बन जाएगी। अच्छा एक बात पूछूं, सच बताना, जब भी मैं मेकअप ठीक करती हूँ तुम कुछ अजीब से अंदाज से क्यों देखने लगते हो? देखो झूठ मत बोलना।
बहुत शार्प निगाह, एकदम एक्सरे की तरह। कोई डिग्री ली है क्या चेहरा पढ़ने की?
हाँ मैंने PhD की है। बात को टालो मत, सीधे सीधे जवाब दो।
वैसे नहीं बता सकूंगा, शायद मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए लिपस्टिक लगाना मुझे पूर्णपन के सिवा कुछ नहीं लगता। खैर मुझे इस बात से और किसी को मेरी इस बात से क्या फर्क पड़ता है?
तुम जरूर कभी लिपस्टिक के कारण रंगे हाथों पकड़े गए होंगे। लो ये गई मेरी लिपस्टिक गार्बेज बिन में, अब चले।
रंगे हाथों? कभी नहीं। और ये फेंक क्यों थी तुमने?
अब वो मेरे किसी काम की नहीं रही, खत्म हो गई थी। कहीं भूल से ये ना समझ बैठो कि मैं।
तुम सच में एक मिस्ट्री हो, मैं चुप था तो ही अच्छा था शायद।
चलो अब जाने भी दो। ये बताओ उसने कहा था कहानी पढ़ी है तुमने कभी?
पढ़ी है, पढ़ी भी है और कई बार पढ़ी है। सच बताऊं पहली बार कुछ खास नहीं लगी थी, लेकिन जब कई बार पढ़ा तो हर बार उसके मायने बदलते दिखे। अब तो बहुत पसंद है और हर बार ये पसंदगी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है।
इंसान भी किताबों की तरह ही होते हैं ना?
किताबें आदमी से कम नहीं होती, हर किस्से कहानी में जाने कितने चेहरे छिपे रहते हैं। कहते हैं एवरी ह्यूमन इज एन एनसाइक्लोपीडिया इफ यू नो हाउ टू रीड, लेकिन अब लगता है ईच बुक इज लाइक अ ह्यूमन, डिफरेंट फेसेस फॉर डिफरेंट ओकेजंस। तुमने नोटिस किया है आजकल बहुत बोलने लगा हूँ ना मैं?
नो यू नीड टू स्पीक अप मोर, मच मोर। गुड नाइट सुबीर। और सुनो बारिश हो रही है, जल्दी से अंदर चले जाना, बेमौसम की बरसात है, भीगना मत नहीं तो बीमार हो जाओगे। कोई है भी तो नहीं जो तुम्हारा ध्यान रखे। बाय सुबीर, गुड नाइट।
गुड नाइट मेनका।
पागल बुद्धू इधर कहीं का, कितना समझाया कि मत भीगो, जरूर बीमार पड़ेगा। आ गए तुम, आज तो मैं छुट्टी पर थी। कैसा रहा ऑफिस में आज का दिन?
कैसा रहेगा, आज करवा चौथ है ना, सारी औरतें लंच के बाद उठाया और मर्द उनके जाते ही। सिर्फ हमारे जैसे अकेले लोग बैठे गधों की तरह कीबोर्ड तोड़ रहे थे।
वैसे आज मुझे मालूम था कि बिना बुलाए भी आओगे।
मैंने दोपहर में फोन किया था, माँ ने बताया सो रही थी तुम। कैसी तबीयत है अब?
ठीक हो गई हूँ मैं। जब तुम्हारा फोन आया मैं बिस्तर में थी, लेकिन सो नहीं रही थी, जानबूझकर बात नहीं की थी मैंने।
क्यों बुरा लगा क्या मेरा फोन करना?
तुम फोन ना करते तो बहुत बुरा लगता, बात कर लेती तो फिर तुम आते कहाँ मिलने के लिए। काश ये मियादी बुखार होता और बिना बुलाए तुम रोज ऐसे ही मुझे मिलने आते।
पागल हो तुम, दिन भर हम ऑफिस में साथ रहते हैं, फिर ये कुछ देर के लिए मिलने आने का क्या मतलब?
तुम नहीं समझोगे और समझाने से तुम्हारे दिमाग में बात बैठेगी नहीं और बात का मजा भी जाता रहेगा।
मत समझाओ फिर, वैसे भी मेरे दिमाग में ज्यादा जरूरी चीजें चल रही हैं आजकल।
लो चाय पियो। कहीं आज तुमने भी तो व्रत नहीं रखा? चाय पीने से ऋषिवर का व्रत भंग ना हो जाए कहीं।
अब जब व्रत भंग हो ही चुका है तो खा पी कर क्यों ना मरा जाए?
सुबीर, सोच समझ कर बोला करो, कुछ भी बक दिया वो भी करवा चौथ के दिन। कहीं कोई तुम्हारे लंबे जीवन की कामना करती होगी और तुम ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो।
अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? ये तो एक मामूली बात है जो मैंने तुम्हारी बात के जवाब में कही। तो तुम भी चाय लो।
मुझसे नहीं पी जाएगी, वैसे अब मैं ठीक हूँ, अब खाना ही खाऊंगी। माँ माँ, सुबीर भी हम लोगों के साथ ही खाना खाएगा, नहीं तो खाना बनाने के नाम पर इसे भागने का मौका मिल जाएगा बीमार से दूर, और मैं फिर अकेले बैठी बोर हो जाऊंगी।
ऑफिस से बाहर हो लेकिन ऑर्डर देने से बाज नहीं आती। इस मामले में लगता है जगह से ज्यादा ऑर्डर मानने वाले इंसान से फर्क पड़ता है।
ओहो, अब बोर मत करो, वैसे ही दिन भर की बोरियत का कम थी।
रेडियो सुनना था ना, बोर होने से बच जाती। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह पढ़ने लगा हूँ, तुम्हें मेरी तरह रेडियो सुनना चाहिए। न आँखों पर जोर और न दिमाग पर बोझ।
आज सारा दिन मैं रेडियो सुनती रही और बोरियत दूर भगाई। तुम मेरी तरह पढ़ने जो लगे हो तो मैं तुम्हारी तरह रेडियो सुनने लगी।
अच्छा किया, एक और अच्छा काम किया तुमने। बताऊं क्या, आज साड़ी जो पहनी है?
हाँ, करवा चौथ की पूजा की तैयारियों के बीच मैंने भी सोचा चलो आज साड़ी पहन लो। सुबीर वो देखो, देखो चांद निकल आया।
देख रहा हूँ, एक चांद आसमान पे है, एक मेरे पास है। अरे तेरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर क्यों छू लिए तुमने?
जाने अनजाने में मेरा भी करवा चौथ का व्रत हो गया। जब भी तुम्हें जन्मदिन पर या किसी और मौके पर अपनी खुशी के लिए कोई गिफ्ट दिया है तो तुम कितने नखरे दिखाते हो मुझे। ये साड़ी मैंने खरीदी है अपने लिए, तुम्हारी तरफ से। इसके पैसे तुम दोगे, मैं खुद मांग रही हूँ तुमसे। समझ में आया?
शुभ्रा, क्या करके मानोगी?
मैं तुम्हारे आंगन में ठुमक कर मानूंगी, जान लो सिर्फ इतना। समय तुम तय करोगे, इंतजार मैं करूंगी।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।